नमस्कार भारत, तारीख 5 जुलाई दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। मोदी आज बदल सकते हैं मंत्रिमंडल का चेहरा, कुछ नए चेहरे दिखेंगे तो कुछ पुराने होंगे गायब।
कुछ लोगों को फोन आया और उनसे कहा गया कि वो तैयार रहे, उसको देखते हुए तो हमें ये लग रहा है कि ये सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा है, कैबिनेट रिशफल और एक्सपेंशन उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है।
सऊदी अरब में मदीना में मस्जिद के पास हुआ धमाका, इंदौर में डॉक्टरों ने 12 साल के एक लड़के के माथे पर उगाई नाक, फिर से लगाई चेहरे पर।
पहले स्टेज में हमने जो है सिलिकॉन की एक थैली माथे पर स्थापित करी और उसको हम सिलिकॉन के सलाइन के इंजेक्शन देके बढ़ाते रहे और इसको हमने नाक की जगह ट्रांसफर किया।
कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आज 19 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, जबकि 6 मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वहां से 3 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। सऊदी अरब में कल 3 धमाके हुए। एक धमाका इस्लाम धर्म में मक्का के बाद सबसे पवित्र माने जाने वाली जगह मदीना में एक मस्जिद के पास हुआ है। स्थानीय मीडिया के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने पैगंबर की मस्जिद के पास खुद को उड़ा लिया। धमाके में 4 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। इसके ठीक पहले पूर्वी शहर कतीफ में एक शिया मस्जिद पर हमला हुआ था और सवेरे जिद्दा में धमाका हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सीरिया के 4 शहरों में करीब 62,000 लोग फंसे हुए हैं और खाने की कमी के कारण मौत की कगार पर हैं। दमिश्क में संयुक्त राष्ट्र के संयोजक याकूब अल हिलो ने अपील की है कि इलाके से स्वास्थ्य कारणों से लोगों को बाहर निकाला जाए और बिना शर्त मानवीय राहत पहुंचाई जाए। इस बीच रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने बीते साल दिसंबर में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले समूह के कब्जे से छुड़ाए गए इराकी शहर रमादा में तबाही का वीडियो जारी किया है। रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष पीटर मोरोर का कहना है,
द सफरिंग हैज रीच्ड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स, Hundreds of thousands killed, millions on the
लोगों की तकलीफें बेहद बढ़ गई हैं, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग शहर छोड़ रहे हैं, परिवार बिखर गए हैं। रमजान का महीना खत्म होने को है, लेकिन कई लोग अभी भी डर और अनिश्चितता के माहौल में हैं। एक मानवीय तबाही है हमारे सामने और समझने में कोई गलती ना करें, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं सभी के लिए। ये थे रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष पीटर मोरोर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर जाने के फैसले का यूनियन के लगातार विस्तार की योजनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका यह बयान बल्कान देशों के साथ यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के बारे में चल रही बातचीत के बाद आया है। बांग्लादेश में अवामी लीग के ढाका चैप्टर के नेता इम्तियाज खान ने बीबीसी को बताया है कि वो ये जानकर स्तब्ध हैं कि उनका बेटा कैफे पर हुए हमले में शामिल था। उन्होंने बताया कि उनका बेटा रोहन दिसंबर में घर से गायब हो गया था, जिसके बाद से उसके साथ उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया था। शुक्रवार को ढाका में कैफे पर हुए एक हमले में 20 बंधकों की मौत हो गई थी, जिनमें से 17 विदेशी थे। इराक में प्रमुख मुस्लिम शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने हाल में बगदाद में हुए बम हमलों के लिए सरकार की निंदा की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय कैबिनेट में उलटफेर करने जा रहे हैं, ऐसे संकेत हैं। जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल में प्रधानमंत्री की निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर होंगी। इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दरअसल सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रही है। चर्चा है कि कैबिनेट विस्तार में कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। पूरी रिपोर्ट सुनिए अमरीश द्विवेदी से।
मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अपने कैबिनेट में विस्तार कर रहे हैं। इस वक्त कैबिनेट में 66 मंत्री हैं और संविधान के मुताबिक कैबिनेट में 82 तक मंत्री हो सकते हैं। लेकिन क्या इस वक्त कैबिनेट में फेरबदल की यही वजह है, या फिर मोदी सरकार कैबिनेट में बदलाव कर कुछ और भी हासिल करना चाहती है? वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह कहते हैं,
जो लिस्ट आ रही हैं और जिस तरह के नाम उसमें दिखाई दे रहे हैं और जो लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को फोन आया और उनसे कहा गया कि वो तैयार रहे, उसको देखते हुए तो हमें ये लग रहा है कि ये सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा है, कैबिनेट रिशफल और एक्सपेंशन उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है।
सर्बानंद सोनोवाल के असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद से खेल मंत्रालय में मंत्री पद खाली है। अंदाजा है कि प्रधानमंत्री ऐसे खाली पड़े मंत्रालयों को भी भर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक कैबिनेट में फेरबदल से पहले सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई नेताओं से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि सरकार के साथ साथ पार्टी गठबंधन में भी बदलाव किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट में फेरबदल के दौरान सरकार की नजर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रहेगी और राज्य में अपना दल की ओबीसी नेता अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश से दो और नेताओं महेंद्रनाथ पांडे और कृष्णराज के नामों की भी जोर शोर से चर्चा हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी मानती हैं कि इस वक्त कैबिनेट विस्तार या फेरबदल से पार्टी एक साथ कई मकसद साध सकती है।
2017 के अहम चुनाव होने वाले हैं जो कि भाजपा के लिए बहुत महत्व रखते हैं, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और गुजरात। अगर कुछ नाराजगियां भी होती हैं इस समय तो झेल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ग्रूमिंग करनी है तो उसके लिए टाइम है, और अगर आपको इशारा भी करना है कास्ट को, कम्युनिटी को, कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, यूपी तो बहुत अहम है उस मामले में, तो वो भी टाइम है तकरीबन एक साल वो सब करने का।
कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश के नेताओं के अलावा एसएस अहलूवालिया, विजय गोयल, बीकानेर से सांसद पीपी चौधरी, गुजरात से राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला और महाराष्ट्र से रामदास अठावले के नाम की भी चर्चा हो रही है। साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने की भी बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच कैबिनेट में फेरबदल से पहले ही गठबंधन में शामिल शिवसेना ने अपनी नाराजगी जता दी है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बयान जारी कर कहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिवसेना को किस तरह शामिल किया जाएगा इस पर स्पष्टता होनी चाहिए। ठाकरे ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। अजय सिंह कहते हैं,
शिवसेना का अगर ये नेचर आप देखें तो हमेशा रहा है, ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार है, शिवसेना के धमकी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। नाराजगी उनका एक गुण है जिसको कि वो रखते हैं और ये लोग भी उसको सुन के झाड़ देते हैं कि अच्छा ठीक है, नाराज होना उनका काम है।
कहा जा रहा है कि कैबिनेट के इस फेरबदल में गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन संगठन में बदलाव कर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिन पर करीब 3 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को कार्य रूप देने की जिम्मेदारी होगी। अमरेश द्विवेदी, बीबीसी दिल्ली।
नरेंद्र मोदी आज मंत्रिमंडल का चेहरा बदल सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जुबैर अहमद। जुबैर साहब, रद्दोबदल की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को?
देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल कुछ राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब और गुजरात में, तो वहाँ पर पार्टी की जो संगठन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है उसको वो मजबूत करना चाहते हैं। दूसरा कारण है कि एज लिमिट, जो कुछ मंत्री हैं जैसे 75 साल, जो बीजेपी का अपना स्टेटेड एम है कि 75 साल से ज़्यादा की जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं उनको हटाओ। तो नजमा हेपतुल्ला, कलराज मिश्रा, ये 2 ऐसे मंत्री हैं जो 75 के हो चुके हैं। नजमा हेपतुल्ला का मुझे लगता है कि उनको शायद उनकी ये जैसे आ गई कि कहीं गवर्नर बना दे। कलराज मिश्रा के बारे में थोड़ी सी एक उनको
यूपी का बड़ा नाम है,
वो अपर कास्ट के हैं, उनकी पकड़ है उत्तर प्रदेश में, तो उनके लिए अभी मुश्किल हो रहा है कि उनके साथ क्या करें। तो आज हमें शायद इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको हटाया जा रहा है कि नहीं। तीसरा कारण यह है कि जो संगठन को मजबूत और करने की जो बात चल रही थी, बहुत सारे चेहरे जैसे जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बारे में कहा जाता है पार्टी में कि वो संगठन को मजबूत करने में या उसका विस्तार करने में या उसमें जो भी ज़रूरत है, किसी कोई नाराज़ है उसको ठीक करने में, ये उसमें उनकी बड़ी क्षमता है। तो हो सकता है कि उनको
संगठन में
वापस ले लें।
महत्व क्या है?
महत्व तो यही लगता है कि आप देखिए, पिछले 2 महीने से हम सुनते आ रहे हैं कि कैबिनेट रिशफल होने वाला, रद्दो बदल होने जा रहा है। तो एक तो नेचुरल नीड ऑफ द आवर, वक्त की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि पार्टी चूंकि इलेक्शन मोड में अभी भी है और अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं, इस साल भी हुए और अगले साल भी होने जा रहे हैं, तो पार्टी को उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से किसी न किसी सूरत में वो पार्टी ये राज्य में इलेक्शन जीतना चाहती है और उसमें ऑर्गेनाइजेशनल मजबूती हर हाल में इनको लाना है। तो इसलिए ये जो रद्दोबदल हम देख रहे हैं आज हमें सुनने में मिलेगा, तो इसकी उसका मुख्य कारण शायद यही है।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अहमद साहब। आज मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा मोहरा बदल सकते हैं, विश्लेषण करने के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। रुख अंतर्राष्ट्रीय खबर का करते हैं। सऊदी अरब के स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के नजदीक सुरक्षा मुख्यालय के पास खुद को उड़ा लिया। सोशल मीडिया में काला धुआं और जली हुई कारें दिखाई दे रही हैं और जो वीडियो नजर आ रहे हैं उसमें कार पार्किंग में गाड़ी में आग लगी हुई दिख रही है। कुछ अन्य वीडियो में इलाके में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां हैं। स्थानीय टीवी चैनल के मुताबिक हमलावर ने बम से खुद को तब उड़ाया जब सुरक्षाकर्मी इंतजार कर रहे थे, लेकिन विरोधाभासी खबर यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ जगहों पर इस तरह की चर्चा है कि कार में धमाका हुआ और आग लग गई। ये जगह कैसी है, किस तरह दिखती है और कितनी दूर है ये जगह? मैंने बात की मदीना में रह रहे स्थानीय नागरिक जलील रहमान से।
ये जगह प्रोफेट मॉस्क जो है मदीना में, उस मस्जिद के जो सबसे नियरेस्ट सिक्योरिटी पोस्ट है वहाँ पर ये धमाका हुआ है और अभी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कार पार्किंग में हुआ है। इसकी सिक्योरिटी पोस्ट के कार पार्किंग में धमाका हुआ, उस धमाके की वजह से आग लगी है। और ये जो प्रोफेट मॉस्क है ये खुद कई किलोमीटर में है, चारों तरफ से अगर उसको मेजरमेंट करें तो कई किलोमीटर का एरिया तो उसका अपना है और उसके एरिया के बाद इमीडिएट जो है ना सबसे नियरेस्ट ये पुलिस पोस्ट है जहाँ पर ये धमाका हुआ।
ये जो है ये रमजान का महीना है और इस रमजान के महीने में इस समय कितनी तादाद में लोग वहाँ पर इस समय इन इलाकों में होते हैं?
ये रमजान के महीने में तो आप जानते होंगे कि एक एक रात में जो है ना तकरीबन 20-20 लाख लोग रहते हैं अरब के मॉस्क में और मस्जिद नबी के मॉस्क में, तकरीबन कभी 20 लाख कभी 15 लाख। खास तरीके से 27th और 29th की जो नाइट होती है उसमें बहुत ज्यादा रश होती है। मस्जिद हराम में तो तकरीबन 25 लाख तक रश पहुंच जाती है और मस्जिद नबी में भी रश बहुत ज्यादा होती है। प्रोफेट मदीना में जहां ये हादसा हुआ तो लाखों की रश होती है, लेकिन सिक्योरिटी इतना ज्यादा हाई अलर्ट है और इतना ज्यादा कोऑपरेटिव है और इतना ज्यादा इनका मैनेजमेंट बेस्ट से बेस्ट है कि उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब यहाँ आए बगैर तो उसको इमेजिन किया ही नहीं जा सकता क्योंकि उतना हाई मतलब सिक्योरिटी का सिस्टम अभी तक नहीं है पूरी दुनिया में और इसी वजह से 25 लाख लोग विद इन 2 आवर एक जगह पे गैदर होते हैं, जमा होते हैं और क्लियर करके निकल जाते हैं। पूरे एक महीने में मतलब करोड़ से ज्यादा लोग आए गए लेकिन अभी तक कोई एक सिंगल इंसिडेंट जो है भगदड़ का या इस तरह के हादसे नहीं पेश आया।
स्थानीय नागरिक मदीना से जलील रहमान हमें बता रहे थे कि वो जगह कौन सी है और वहाँ पर किस तरह से लोग आते हैं और जाते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका की आर्टिसन बेकरी में हुए हमलों में 20 बंधक को बर्बरता से मार दिया गया था जिसमें कि एक भारतीय लड़की भी शामिल थी। हमला करने वाले 5 संदिग्ध चरमपंथियों में से एक रोहन इब्ने इम्तियाज भी थे। रोहन इब्ने इम्तियाज के पिता इम्तियाज खान देश बांग्लादेश की सत्ताधारी आवामी लीग से जुड़े नेता हैं। वो अपने बेटे के बारे में मिली जानकारियों से सदमे में हैं जो कि 6 महीने पहले लापता हो गया था। बीबीसी बांग्ला सेवा से बातचीत में उन्होंने अपने बेटे के लापता होने की दास्तां बयां की।
मेरा बेटा पिछले साल 30 दिसंबर से ही लापता है। 25 दिसंबर को मैं अपनी पत्नी को इलाज के लिए भारत लेकर गया था। 30 दिसंबर को मेरे बच्चों को हमारी एक रिश्तेदार ने रात के खाने पर बुलाया था। रोहन डिनर पर नहीं गया था, केवल मेरी बेटियां गई थीं। लेकिन जब वो लौटी तो मेरा बेटा घर पर नहीं था। गार्ड ने बताया कि शाम को ही वो एक बैग लेकर बाहर निकल गया था। जब 30 दिसंबर को मुझे ये खबर मिली तो मैंने लौटने की कोशिश की, लेकिन 1 जनवरी से पहले मुझे कोई सीधी फ्लाइट नहीं मिली। लौटकर मैंने अपने सभी रिश्तेदारों और उनके दोस्तों को संपर्क किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तब मैंने पुलिस को खबर दी। फिर मैं गृह मंत्री से मिला और तब उन्होंने पुलिस प्रमुख और दूसरी स्पेशल फोर्सेस को सूचित किया। उसके बाद हमने सभी सूत्रों से उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा। वो मेरा इकलौता बेटा है। एक पिता के रूप में उसे ढूंढने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं सके। मैं उसके कट्टरपंथी बनने की खबर जानकर स्तब्ध हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही पांचों वक्त नमाज पढ़ता था। हमारे घर से महज 25 फीट की दूरी पर ही एक मस्जिद है। उसने अपने दादा के साथ नमाज पढ़ने जाना शुरू किया था, लेकिन हमने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी। हमारे घर में ऐसी कोई किताब या सामग्री नहीं थी जिससे उसके ऐसे झुकाव का संकेत मिलता, इसलिए हमें उस पर कोई शक नहीं हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस घटना से मिले सदमे और दुख से मैं बेहद परेशान हूं और खेद प्रकट करता हूं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शेख मारूफ ने रोहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं।
আমি দেখতে পেলাম, আমি জানতে পেলাম এরকম আমার ছেলের মতো অনেক ছেলেই নিখোঁজ আছে, অনেক ভালো ভালো ছেলে, ভালো ভালো।
जब मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा था तब मुझे पता चला कि कई और लड़के लापता हैं। वो पढ़े लिखे और अच्छे परिवारों और सरकारी अधिकारियों के बच्चे हैं। मैं अपना दुख उनसे बांटा करता था। हम नहीं जानते ये सब कैसे हो रहा है। शायद ये इंटरनेट से हो रहा है। मैं नहीं जानता ये क्यों हो रहा है। मैं तो बस अनुमान लगा सकता हूँ।
हमला करने वाले चरमपंथी के पिता इम्तियाज खान बंगला भाषा में अपना दर्द बयां कर रहे थे और कह रहे थे कि वो अचंभित थे। इसे हिंदी में स्वर दिया था प्रभात पांडे ने।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
एक बार रुख फिर से भारत का करते हैं और भारत में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की बात करते हैं, जहां डॉक्टरों ने 12 साल के एक लड़के के माथे पर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए नाक उगाई और उसे फिर नाक के स्थान पर प्रत्यारोपित कर दिया। कामयाबी के साथ उन्होंने ये किया। सुनिए भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
12 साल का अरुण पटेल उज्जैन जिले का रहने वाला है। बचपन में जब वह 3 महीने का था तब निमोनिया होने पर इलाज कराने पर उसकी नाक गलकर निकल गई। इसके बाद 12 साल तक उसे किसी को नहीं दिखाया क्योंकि लोगों ने बोल दिया था कि इस उम्र से पहले कुछ भी होने की गुंजाइश कम ही है। अरुण के चेहरे पर सामान्य रायनोप्लास्टी मुमकिन नहीं थी क्योंकि नाक के स्थान पर कुछ भी नहीं था, इसलिए उस पर विशेष प्लास्टिक सर्जरी की गई। उसके इस मामले को डॉक्टर अश्विनी दास की टीम ने अपने हाथ में लिया और 4 ऑपरेशन के बाद वह उसके चेहरे पर नाक लगाने में कामयाब रहे। डॉक्टर अश्विनी दास ने बताया,
पहले स्टेज में हमने जो है सिलिकॉन की एक थैली माथे पर स्थापित करी और उसको हम सिलिकॉन के सलाइन के इंजेक्शन देके बढ़ाते रहे। जब ये करीब 65 से 70 ml की जगह बन गई तो फिर हमने दूसरी सर्जरी की, जिसमें हमने केले के नीचे वाले हिस्से से कार्टिलेज लेके नई नाक का शेप उसके चेहरे के हिसाब से, आकार के हिसाब से बना के माथे पर स्थापित करी। उसके 3 महीने बाद अंदाजन जब ये नाक वहां पे स्थापित हो गई है, तब हमने इसको बहुत ही पतले नसों पे बेस करके और को हमने नाक की जगह ट्रांसफर किया और बाद में एक प्रक्रिया हुई थी जिसमें उसके नाक के छिद्र को बड़ा किया गया और साथ में माथे की चमड़ी को ठीक किया गया। ये 4th चरण में हुआ, ये 4 ऑपरेशन थे इनके।
डॉक्टर का दावा है कि नाक को जिस तरह से बच्चे के ही टिश्यू से बनाया गया है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि नाक भी बच्चे के दूसरे अंग की तरह बढ़ती रहेगी। लेकिन 16-17 साल की उम्र में परफेक्ट राइनोप्लास्टी की जरूरत पड़ सकती है ताकि नाक को बिल्कुल सही शेप दिया जा सके। ये लड़का साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है, इसलिए कोशिश की गई है कि उसका इलाज कम से कम पैसों में किया जाए।
किसान परिवार का बच्चा है, हाईफाई हॉस्पिटल तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो मैंने इनका कुछ एक अपनी तरफ से कंसेशन दिया, कुछ एक स्टेजेस मैंने छोटे हॉस्पिटल्स में करी ताकि खर्चा कम हो और खुद जो पहली स्टेज में हमने टिश्यू एक्सपांडर एक डाला था माथे की चमड़े को बढ़ाने के लिए, टिश्यू एक्सपांडर सिलिकॉन का आता है, वो 40,000 का था एक्सपांडर। तो इस तरह से सारा ऑपरेशन और चार स्टेजेस की मिला के अब तक के करीब करीब इसका 1.25 लाख रुपए ऑपरेशन में प्लस 40,000 रुपए एक्सपांडर का, इतना करीब खर्चा हुआ है।
डॉक्टर अश्वनी दास का कहना है कि इस तरह का मामला पिछले साल चीन में आया था जिससे उन्हें ये करने की प्रेरणा मिली। मुमकिन है कि यह देश का अपने तरह का पहला मामला हो, लेकिन इस ऑपरेशन ने अरुण की जिंदगी में बदलाव लाया है। पहले नाक न होने की वजह से वो सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन अब वह खुश है और सबका सामना करने लगा है। शुरहनियाजी, भोपाल।
और इस खबर के बाद अब अखबारों के पन्ने पलटेंगे। मानसी दास, ये काम आप कर चुकी हैं, बताइए कि क्या कह रहे हैं अखबार।
आज हिंदी और अंग्रेजी के लगभग सभी अखबारों में प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू और कैबिनेट के विस्तार से संबंधित खबरें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी की खबरें ही दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत मिलेगी, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। दी पायनियर अखबार को दिए एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा है कि विकास और केवल विकास के वादे पर भाजपा चुनाव जीतेगी। अखबार में छपी एक अलग खबर भी आपको बता दूं कि दुर्घटना में बुरी तरह से घायल एक व्यक्ति को जब दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में लाया गया, वहां उनकी मौत हो गई। इस बात से नाराज रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। खबर के अनुसार पिछले साल जुलाई के बाद से अब तक डॉक्टरों पर हमले होने की 30 से 40 घटनाएं हो चुकी हैं। अंग्रेजी के अखबार दी स्टेट्समैन में छपी एक खबर के अनुसार रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि जल्द ही भारतीय सेना, खासकर जल सेना में महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सैनिक स्कूलों और नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं की भर्ती के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और महिलाओं की एक बटालियन बनाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। इस बयान को अखबार ने पहले पन्ने पर नीचे जगह दी है। अंग्रेजी के अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के अनुसार विज्ञापनों पर नजर रखने वाली संस्था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के उत्पाद भ्रामक विज्ञापन कैंपेन चला रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी उत्पादों को बदनाम कर रहे हैं। संस्था का कहना है कि कच्ची घानी सरसों तेल, फ्रूट जूस और जानवरों का खाना दुग्धामृत के विज्ञापनों में पतंजलि ने अन्य उत्पादों पर गलत आरोप लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार विवादित धर्मगुरु राधे मां पर पिछले साल लगे दहेज उत्पीड़न के आरोप के मामले में दायर हुई चार्जशीट में उनका नाम नहीं है।
और मैं एक खबर का जिक्र कर दूं, जनसत्ता ने छापा है कि जो बिहार बोर्ड की टॉपर रूबी जिनका जिक्र हो रहा था, उनको नाबालिग कोर्ट ने मान लिया है और उन्हें रिमांड होम भेजने का रास्ता साफ हो गया है। और अब चर्चा बिहार की चल रही है, तो बिहार में पुलिस के कामकाज को लेकर जो सवाल उठते हैं उसके पीछे उनके प्रशिक्षण की बड़ी भूमिका है। जानकारों का मानना है कि पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग को लेकर पहले से तो कुछ कमियां थी ही, मौजूदा सरकारों ने भी इस दिशा में कुछ खास नहीं किया। सुनिए पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
बिहार पुलिस की पेशेवर दक्षता में गिरावट के कई कारण हैं। पहला यह कि 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड बंटवारे के बाद इसके हिस्से में सिर्फ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल नाथनगर भागलपुर रह गया, जबकि राज्य में डुमराव और राजगीर में प्रशिक्षण संस्थान सालों से निर्माणाधीन है तो सिमुलतला में सरकार को अभी तक जमीन तक नहीं मिल पाई है। विभाजन के उपरांत वर्ष 2000 से 2009 तक डीएसपी पद पर दो और दरोगा के एक बैच की नियुक्ति हुई, जिसका प्रशिक्षण दूसरे राज्यों में कराया गया। कमजोर पुलिसिंग का दूसरा बड़ा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप है। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान 1994 में दरोगा के 1640 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए जब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग भेजा गया, तब उनमें से 225 से ज्यादा लोग शारीरिक माप में खरे नहीं उतरे थे। तत्कालीन सरकार ने प्रशिक्षुओं को छांटने वाले कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डीएन गौतम का तबादला कर दिया और सभी 1640 अभ्यर्थियों को दरोगा बना दिया। यह पुलिस की दक्षता से किया गया राजनीतिक समझौता था। तब का अपना अनुभव साझा करते हुए बिहार के पूर्व डीजीपी डीएन गौतम कहते हैं कि
ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मैं आईजी ट्रेनिंग था और मेरे नीचे एक कांस्टेबल था, उधार का आया था। ट्रेनिंग के प्रति एक उपेक्षा का एटीट्यूड रहा है। 1994 में 1600 से 1650 सब इंस्पेक्टर रिक्रूट हुए थे। मैं प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी हूँ। ये अलग बात है कि मैं कोई एक हफ्ते ही रह पाऊँ। उनकी मापी वगैरह मैंने करा दी और उनमें से जो लोग नहीं होने चाहिए थे उनको ज्वाइनिंग नहीं ली, तो इस बात को लेकर के सरकार को बहुत नागवारा गुजरी और एक हफ्ते में मैं वहाँ से रुखसत हो गई। आप इससे समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग के लिए हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है।
गौतम मानते हैं कि ट्रेनिंग के नाम पर आज भी लापरवाही बरती जा रही है और इस वजह से अपराधी चुस्त और पुलिस सुस्त है।
जिनको लोग जिले में नहीं रखना चाहते थे उनको, ज्यादातर दुखी प्राणियों को, बहुत बार डिसग्रंटेड लोगों को लाते थे, आज भी वही समस्या है जो कल थी। और वो समस्या है एटीट्यूड की। सरकारों के सामने भी वही समस्या है, वो है सरकारों के एटीट्यूड। इसका सबसे बड़ा खतरा वो ये है कि अपराध कर्मी छूटेगा या तो पकड़ा नहीं जाएगा, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि जो निर्दोष हैं वो फंसेंगे, फंस रहे हैं।
हालांकि राज्य के वर्तमान डीजीपी ट्रेनिंग KS द्विवेदी पुलिस कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण मुहैया कराने का दावा करते हैं।
सब इंस्पेक्टर्स और डिप्टी SP हरदम भर्ती नहीं होते रहते हैं, 2 साल में 3 साल में उनका जब कभी भी रिक्रूटमेंट होता है तब उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। 11,900 नए सिपाही रिक्रूट हुए हैं, उनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो केवल सिपाही की ट्रेनिंग के लिए है, एक CTS नाथनगर है, एक MPTC डुमराव है और एक PTC सिमुलतल्ला है जमुई। तो जमुई की अभी बिल्डिंग और डुमराओं की बिल्डिंग नहीं बनी है, इसलिए डिफरेंट 34 सेंटर्स पर, जिनमें कई सारे BMP बटालियंस और कई सारे जिले की पुलिस लाइंस शामिल हैं, उसमें हम अभी अपने प्रशिक्षु सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी जस्ट बिल्डिंग किराए की, इसमें हम लोग अभी बैठ करके इसको संचालित कर रहे हैं। बाकी उपेक्षा वाली बात तो मुझे कोई नहीं दिखाई देती।
दरअसल पुलिस ट्रेनिंग के लिए 1983 में IG, 1990 में ADG और 2009 में DG का पद बनने के बाद भी इन्हें न ऑफिस मिला न स्टाफ। वर्ष 2014 में पटना में प्रशिक्षण मुख्यालय किराए के भवन में शुरू किया गया। पिछले साल 29 पद सृजित किए गए, लेकिन आज तक पूरे स्वीकृत पद भरे नहीं जा सके हैं। इन लापरवाहियों के चलते पुलिस सुस्त पड़ती चली गई। इसका परिणाम यह है कि आज बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते बिहार की छवि खराब हो रही है। नीरज सहाय, BBC, पटना।
बिहार पुलिस की ट्रेनिंग। और अब विंबलडन की खबरें अपूर्व कृष्ण से।
विंबलडन 2016 अपडेट।
विंबलडन पर लंदन से BBC हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। विंबलडन का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। कल चौथे दौर के कई मैच हुए और रोजर फेडरर, एंडी मरे, मारिन चिलिच, स्वयं क्वेरी, मिलोस राउनिक और जो विल्फ्रेड सोंगा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी ब्रिटेन के एंडी मरे बड़े आराम से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निकोला किर्गियोस को 7-5, 6-1, 6-4 से हराया। 7 बार के विंबलडन चैंपियन स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने कल अमेरिका के स्टीव जॉनसन को सीधे सेटों में 6-2, 6-3, 7-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में फेडरर का मुकाबला क्रोएशिया के मारिन चिलिच से होगा। इस मुकाबले के बारे में फेडरर का कहना था, आप पहले हफ्ते में हार सकते हैं, तो मैंने पहले हफ्ते में काफी कुछ ठीक रखा, मगर अब आपको अपना सबसे अच्छा खेल खेलना होगा। आगे चिलिच हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले US ओपन के सेमीफाइनल में मुझे बड़े आराम से हरा दिया था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुकाबला कड़ा होगा। रोजर फेडरर के शब्द। कल 9वीं सीट के मारिन चिलिच का मुकाबला 5वीं सीट के खिलाड़ी जापान के निशिकोरी से था, मगर निशिकोरी को पसली की चोट के कारण मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। कल 7वीं सीट के फ्रांस के खिलाड़ी रिचर्ड गास्के को भी पीठ में दर्द के कारण मैच से हटना पड़ा और उनका मुकाबला कर रहे 12वीं सीट के उन्हीं के देश फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जहां अब उनकी भिड़ंत एंडी मरे से होगी। नोवाक जोकोविच को तीसरे ही दौर में बाहर करने वाले अमेरिका के खिलाड़ी सैम क्वेरी की जीत का सिलसिला जारी है। क्वेरी ने फ्रांस के निकोला माहू को 6-4, 7-6, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिलाओं के वर्ग में 6 बार की विंबलडन चैंपियन सरीना विलियम्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दुनिया की पहले नंबर की अमेरिकी खिलाड़ी ने कल रूस की स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा को सीधे सेटों में 7-5, 6-0 से हराया। सरीना की बड़ी बहन, 5 बार की विंबलडन विजेता वीनस विलियम्स भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मगर तीसरी सीट की खिलाड़ी पोलैंड की एग्नियस्का राडवांस्का क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही। भारतीय खिलाड़ियों में पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और रोमानिया के उनके जोड़ीदार फ्लोरिन मर्जा तीसरे दौर में बाहर हो गए। अपूर्व कृष्ण, BBC, विंबलडन।
और अब इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और मंत्रिमंडल में नई चेहरों को शामिल कर सकते हैं। सऊदी अरब में कल 3 धमाके हुए। एक धमाका इस्लाम धर्म में मक्का के बाद सबसे पवित्र माने जाने वाली जगह मदीना में एक मस्जिद के पास हुआ। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सीरिया के 4 शहरों में करीब 62,000 लोग फंसे हुए हैं और खाने की कमी के कारण मौत की कगार पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर जाने के फैसले का यूनियन के लगातार विस्तार की योजनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। 1 घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को फिलहाल विदा दें। नमस्कार।